نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ان شاء الله تعالى آج ہم سورہ نور کی جو ریویو ہے وہ کریں گے. آواز نہیں آ رہی کیا پیل ٹاک پہ؟ اب آواز آ رہی ہے جی؟ آواز ہے؟ اچھا، تھوڑی سی دیر ذرا انتظار کریے. اچھا، تو یہ سورہ چونکہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ سورہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تک ہم نے تو کسی سورت کا ریکیپ نہیں کیا ایسے. تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں عورتوں کو خاص طور پہ کہا گیا کہ وہ اس سورت کو سیکھیں. یعنی ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت ہی فرض ہے، ساری سورتیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ اس سورت کے سٹارٹ میں ہی کہا گیا کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے. اس میں ایسے احکامات ہیں جو ہماری ڈیلی لائف سے متعلق ہیں، اور اس میں وہ احکامات ہیں جس میں صرف ایک گھر کی نہیں پوری سوسائٹی کی فلاح ہے، کامیابی ہے. یہ خواتین کے حوالے سے انتہائی اہم صورت ہے. جو پورا قرآن نہیں بھی پڑھ رہا اس کو اس صورت کو کم از کم ضرور سیکھنا چاہیے. معاشرے میں رہنے کے آداب اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے اس سورت کے شروع میں ہی دیکھا، میں چاہوں گی آپ لوگ اپنے پارے نکال لیں لفظی ترجمے والے، اور آج انشاءاللہ ہم اس سورت کو ایک سٹریچ میں بھی سنیں گے تاکہ پوری سورت کے تمام مضامین آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم تفسیر میں سنتے ہیں نا تو اتنے ذہن نشین نہیں ہوتا، بیٹھتا نہیں ہے دماغ کے اندر، لیکن جب دوبارہ اس کو ریویو کرتے ہیں تو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کا جو سٹارٹ ہے اس میں کچھ ایسی معاشرتی خرابیوں کا ذکر ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں زنا کی بات ہے. یہ ایک ایسی بری چیز ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو گھن کی طرح کھا جانے والی ہے، کہ اس سوسائٹی کا سکون ختم کر دیتی ہے. انسانوں کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو کے رہ جاتی ہے. آج دیکھیں غیر مسلم سوسائٹیز میں تو یہ ہے ہی ہے، لیکن مسلمان ملک بھی اس میں پیچھے نہیں ہے. اگر آپ صرف ہمارے ملک میں ہی دیکھ لیں تو وہاں پہ ہی یہ خرابی اتنی عام ہو چکی ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے جو طریقے ہم نے اپنائے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، مثال کے طور پہ مجلسوں میں بیٹھ کے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اس کو، سکینڈل اچھالتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، کوئی مے بھی کوئی زیادہ ہی کرے گا تو کوئی جلوس نکال لے گا بے حیائی کے خلاف. ویسے ابھی تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا. یا بینر وغیرہ لگا لیتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن یہ اصلاح کے طریقے نہیں ہیں، اس سے اصلاح نہیں ہوگی. پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ کیا طریقہ ہے اپنا ہے؟ دیکھیں کوئی دین سے کوئی زیادہ لگاؤ نہ بھی رکھتا ہو نا، تو ان چیزوں کو ہر انسان فطرتاً برا سمجھتا ہے، ایسا ہی ہے نا. کسی کو بھی یہ چیزیں یہ باتیں کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کا شوہر اس میں ملوث ہو، کوئی نہیں چاہے گا اس کا بیٹا زناکار ہو، کوئی آدمی نہیں چاہے گا اس کی بیوی ایسی ہو، کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی ایسی ہو. یہ ایسی بری چیز ہے جو کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں چاہتا اور کوئی بھی معاشرے میں نہیں چاہتا کہ پھیلے، خواہ وہ دیندار کہلائے یا نہیں کہلائے، مگر کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہے. तो अब इन चीज़ों को कैसे अपने माशरे से निकाला जाए, इसका तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह के हुक्मों पर जब अमल करोगे ना, तो खुद ब खुद ये चीज़ें निकल जाएंगी तुम्हारे माशरे से। जो यहाँ पे अहकामात दिए हैं, कुल लिल मोमिनीना और कुल लिल मोमिनात, और फिर और भी घरों में दाखिल होने के अहकामात हैं, या आप और देखते हैं इस्तेज़ान के बारे में, यानी कमरों में दाखिल होने के, बच्चों को जो आदाब सिखाए गए हैं, जो बड़ों को सिखाए गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इस सूरत में देखते हैं। अगर ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने वो हुक्म दिए हैं कि घूम फिर के या नज़रों को झुकाने के, पर्दे के, ये घूम फिर के इसी तरफ आ जाते हैं कि आपका माशरा इन असूलों को अगर अपनाएगा तो ही पाक साफ होगा। आपके बातें करने से, इनको बुरा भला कहने से, या बस हम इतना ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम एक मजलिस में बैठे हैं और हम वहाँ पे कह रहे हैं कि ये कि देखो आजकल जो हो रहा है कितना बुरा हो रहा है, इससे कोई बुराई ख़त्म थोड़ी होगी। अगर आप वाकई बुराई ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो इस सूरत में जो अहकाम दिए गए हैं उनको अपना लें, बुराई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हर एक इन अहकाम पर अमल नहीं करता, कौन अमल करेगा? वो जो मोमिन होगा और जो मोमिनात होंगी वो अमल करेंगे, क्योंकि तो सारे ही हुक्म आप देखें उन्हीं को दिए भी गए हैं और उन्हीं के बारे में कहा गया वही समय ना वाता ना करने वाले हैं, बाकी तो सिर्फ सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो जब तक ईमान नहीं है ना, ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। ईमान होगा तो ये सूरत पढ़ेंगे और पढ़ते ही साथ ही कहेंगे समयाना, हमने सुन लिया अल्लाह, हमने मान लिया। बहुत से लोग तर्जमा याद कर लेते हैं, टेस्ट भी दे देते हैं, पास भी कर लेते हैं, उनके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छे नंबर होने चाहिए वहाँ पे नहीं होते। वो क्या है? अमल। अमल नहीं बदलता। किस वजह से? क्योंकि नूर अभी सीने में दाखिल नहीं हुआ। जब नूर सीने में दाखिल होता है ना, तो सीने में इतनी वुसअत हो जाती है, कुशादा हो जाता है, फिर बात समझ आने लगती है, फिर बातों की हिकमत भी समझ आती है, फिर जो अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई दी है उस पे चलने का दिल चाहता है, फिर ये दिल चाहता है कि कैसे इन खराबियों को मैं अपने से दूर करूं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है कि मेरे अंदर का चिराग कितना जल रहा है। आप देख रहे हैं ना, सूरत के बीच में, बिल्कुल मिडल में आके नूर की बात हुई है, जो आयत आपको याद करने को भी कही गई, नूरुन्नला नूर की। तो आप देखते हैं शुरू में भी अल्लाह ताला ने अहकामात दिए, आखिर में भी अहकामात दिए, और बीच में ऐसे लगता है एक नूर रखा हुआ है। नोट किया आपने? जो मिडल में नूर रखा हुआ है सुबहान अल्लाह, उसकी रोशनी हर तरफ जब फैलेगी ना, तो सारे ही अहकाम रोशन हो जाते हैं, ये सारे अहकाम नज़र आने लगते हैं, और फिर इनके ऊपर अमल करना मुमकिन हो जाता है। और अगर ये नूर नहीं जल रहा, अगर अंधेरा है, कोई हुक्म नज़र ही नहीं आएगा। 10 दफ़ा भी पढ़ लेंगे ना आप तो अंधे ही रहेंगे इससे, क्योंकि ये नज़र ही नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि वो नूर नहीं जल रहा। तो आपने सूरत के बीच में जो चराग जल रहा है अल्लाह ने, कभी आपने मे भी सोच रहे होंगे कि भाई हुक्म आते आते फिर एकदम फिर नूरुल्लाह नूर की आयत आ गई, फिर उसके बाद फिर हुक्म आने शुरू हो गए, तो ये क्या सीक्वेंस है, एक साथ क्यों नहीं आ गए? अल्लाह ताला ने चराग को बीच में जला दिया। जिसका चराग रोशन होगा उसके लिए सब हुक्मों पर अमल करना आसान हो जाएगा, और जिसका चिराग नहीं जल रहा या कमज़ोर है या जलता बुझता है, तो आप देखेंगे कि वो इन अहकाम पर अमल नहीं कर पा रहा। आप देख रहे हैं ना कि सुबहान अल्लाह, बहुत सारे फ़ोन्स भी आए, ईमेल्स भी आए, जितनी इस सूरत के बारे में लोगों ने दिलचस्पी और फिर उसके ऊपर अमल की बातों का बताया, मेरे ख़्याल में कोई सूरत भी पहले हमने ऐसी नहीं पढ़ी। और मुझे बहुत ही खुशी भी हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव, ज़्यादातर 99% पॉजिटिव बातें ही पता चली। कि लोग अमल की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यही पता चला कि इर्द गिर्द वाले भी उनके अमल की कोशिश कर रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं। तो कुछ लोग सुभान अल्लाह इतनी जल्दी फौरन मान जाने वाले हैं, और चंद एक लोग ऐसे भी हैं कि जिनके लिए अमल करना इतना मुश्किल लग रहा है, उनको इतना मुश्किल लग रहा है कि जैसे कि पहाड़ चढ़ना। तो मुझे एकदम ना सूरह अनआम की आयत याद आ गई, आयत नंबर 125 है सूरह अनआम की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिलिस्लाम। जिसको अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहता है ना, इरादा कर लेता है अल्लाह उसको हिदायत देने का, तो पता है क्या होता है, उसका सीना खोल देता है इस्लाम के लिए। और वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यकन हरजन। जिसको अल्लाह ताला बेराह करना चाहता है, गुमराह करना चाहता है, जिसको रास्ता नहीं दिखाना चाहता ना, उसका सीना बहुत तंग कर देता है। पता है कैसा तंग, कअन्नमा यस्सअदु फिस्समा, ऐसे लगता है जैसे वो आसमान में चढ़ता है। आसमान पे चढ़ना यानी चढ़ाई चढ़ना कितना मुश्किल होता है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। आपने देखा होगा सीढ़ियाँ चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, आसमान तो और भी बुलंद है, चढ़ना कितना मुश्किल है। मुश्किल लगता है ना, सीना घुटता है, सांस फूलती है, ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो उनके लिए इन अहकाम पर अमल करना उनको इतना मुश्किल लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे इनका सीना घुट जाएगा, जैसे ये मरने लगे हैं, जैसे इनको पता नहीं क्या कह दिया करने को, जैसे इनको कोई पहाड़ चढ़ना है, जैसे इनको आसमान चढ़ने को कह दिया, इस तरह इनको लग रहा है। तो वाकई आप देखेंगे, अपने में ही आप देखेंगे कि दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। अब ये बात क्यों होती है, ये सब इस चराग के जलने या ना जलने की वजह से है। चराग अगर जल रहा है तो आप देखेंगे रोशनी ही रोशनी है। और सिर्फ हम लोग जो कि इस क्लास में मौजूद हैं, सिर्फ अगर हम लोग ही इस सूरत पे इन अहकाम पर अमल कर लेना, तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। लेकिन बात वही है कि हम लोग सोचते हैं कि शायद जब सारा माशरा जब सब करेंगे, या जब कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, सबका इंतज़ार करते हैं या सबसे डरते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, इस सूरत को रिकैप करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो अल्लाह को छोड़ के लोगों से डरता है ना, तो हर चीज़ उसको डराती है, हर चीज़ उसे डराएगी। जो लोगों से डरता है ना, हर चीज़ उसको डराएगी, और जो लोगों को छोड़ के सिर्फ अल्लाह से डरता है, उसे हर चीज़ डरने लगती है। वो इतना स्ट्रांग हो जाता है एक चट्टान की तरह, अल्लाह के आगे सिर्फ झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। अल्लाह से सिर्फ डरता है, किसी से नहीं डरता, हर चीज़ उससे डरने लगती है। जो अल्लाह को छोड़ के लोगों से डरेगा या चीज़ों से डरेगा, हर चीज़ उसको डराएगी, उसको इधर से भी डर लगेगा, उधर से भी डर लगेगा। तो ऐसे लोग फिर अमल नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है कि सूरह नूर है ना, नूर कयामत के दिन भी तो एक है जो मिलना है, ये भी सूरत नूर है। कयामत के दिन कैसा नूर होगा, ईमान वालों को मिलेगा, ये जो समय आना व आता आना करने वाले। सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 12 अगर आप देखें सूरह हदीद में 27वां पारा है, कि कयामत के दिन तू देखेगा कि ईमानदार मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। आज तुम्हें उन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जा रही हैं, जिनमें हमेशा की रिहाइश है, ये है बड़ी कामयाबी। और जो लोग आए और सोचते ही रह गए, उन्होंने समय ना वाताना नहीं किया, मुनाफिकीन थे ना, कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल पर, लेकिन जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला कर देते हैं उनके लिए, तो उनको उसके ऊपर अमल नहीं करना, उनका दिल नहीं करना, या वो शक में पड़े हैं, या उनके अंदर कोई बीमारी है, या वो ये समझते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उनके साथ कोई जुल्म करेंगे। यही तीन बातें कही गई हैं ना। तो उनका भी हाल देख लें। उस दिन मुनाफिक मर्द और औरत ईमानदारों से कहेंगे, हमारा इंतज़ार तो करो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ नूर ले लें। नूर तो ईमान वालों के पास होगा ना, इनका नूर तो जलता बुझता होगा, तो बुझ जाएगा इनका नूर। ये कहेंगे, ठहरो ज़रा, हमें भी अपने नूर में से कुछ दे दो। उनको जवाब दिया जाएगा, तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो, कि नूर यहाँ पे थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नूर तो पीछे मिल रहा है, जाओ तुम वहाँ से जाके नूर लेके आओ। जब अभी ये बातचीत हो ही रही होगी, फिर इनके और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी, जिसमें दरवाज़ा भी होगा। एकदम एक ना दीवार किसके दरमियान आ जाएगी? ईमान वालों के और मुनाफिकीन के दरमियान, और उसमें एक दरवाज़ा भी। इसके अंदर के हिस्से में तो क्या होगा? रहमत होगी, और बाहर की तरफ अजाब होगा। जिस तरफ मुनाफिकीन होंगे उस तरफ अजाब होगा, और इधर इधर जिधर ये आ गए ईमान वाले, इधर रहमत होगी। और ये मुनाफिक चिल्ला चिल्ला के इनसे कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? हम भी तो दुनिया में तुम्हारी फ्रेंड होती थी, मैं तुम्हारी नेबर थी, मैं तुम्हारी बहन थी, या मैं तुम्हारी माँ थी, या मैं आपकी बेटी थी, आप मुझे यहाँ पे छोड़ रही हैं, क्या हम दुनिया में आपके साथ नहीं रहते थे? आज दुनिया में तो मोमिन वो जो समयना व ताना करने वाले हैं, और वो जो समयना व आसईना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की, ये दोनों तरह के लोग एक साथ रहते हैं, गुले मिले रहते हैं। मैं भी एक घर के अंदर ही रहती हूँ, एक ही छत के नीचे समयना व ताना करने वाला भी रहता हो और समयना व आसईना करने वाला भी रहता हो। तो वो इसीलिए कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? यानी हम दुनिया में भी तो साथ ही थे, साथ साथ रहते थे, मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, आज ये जुदाइयाँ कैसी, तुम उधर चले गए मुझे यहीं छोड़ गए। वो कहेंगे, हाँ थे तो सही, तुम दुनिया में हमारे साथ ही थे, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में फंसा रखा था, फितने में डाल लिया था अपने आप को, खुद ही आजमाइशों में डाला हुआ था, और तुम इंतजार में रहे। ये मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, तुम इंतजार में रहे। किस चीज का इंतजार करते थे? कि अच्छा करेंगे, अच्छा चलो कर ही लेंगे ना, कोई नहीं, अभी बड़ा टाइम है, चलो कल, चलो परसों, चलो तरसों, चलो अगले साल, चलो अगले महीने, किसी भी हुक्म को मानने, मैं किसी एक स्पेसिफिक हुक्म की नहीं बात कर रही, किसी हुक्म को मानने के लिए भी, इल्म लेने के लिए भी, इवन इसको सीखने के लिए भी। क्या कहते थे? इन कल 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 इंतजार में ही रहे। और तीसरी क्या चीज़ थी, इनका क्या कसूर था? पहला, अपने आप को खुद इम्तिहानों में डाला, ऐसे लोगों में रहे, मे बी ऐसी मजलिसों में बैठते रहे जहाँ पे पता था कि इनके साथ मैं रहूँगी तो ये मुझे कभी भी अल्लाह की तरफ नहीं आने देंगे, ये इसमें रुकावट है, लेकिन तुम अपने आप को खुद उसमें फंसाए रखे। या ऐसी जॉब में थे, या ऐसी किसी जगह पे रहते थे कि जहाँ पे आप नहीं अमल कर सकते थे, लेकिन आप खुद अपने आप को जानबूझ के वहाँ पे आपने रखा, वहाँ से नहीं निकाला, तो खुद तुमने अपने आप को फितने में डाला। नंबर टू, तुम इंतज़ार में रहे, और ये हम सब की आदत है, नेकी के काम में इंतज़ार इंतज़ार। हाँ कोई और दुनियावी कोई ऐसी काम हो जिसमें हमें अपना दुनिया का फ़ायदा नज़र आता हो तो उसमें बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए या कोई नेकी का काम स्टार्ट करने के लिए इंतज़ार में रहते हैं। और तीसरी क्या चीज़ थी? शक में पड़े रहे, तुम्हें शक ही रहा। जैसे ये हमने इस सूरत में पढ़ा है ना, कि क्या इनको शक है, तो शक में ही रहे, करूं ना करूं, कभी डावा डोल इधर कभी उधर, कभी सोच रहे हैं कर लेती हूँ, फिर कर रही हूँ, अच्छा अगर ये कर लिया तो फलां क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो मेरे से दोस्ती छोड़ देगी, शक में। और या ये पता नहीं हुक्म सही भी है या नहीं, या पता नहीं इन्होंने अपनी तरह से बता दिया, या पता नहीं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, इसी में रहे। और तुम्हें तुम्हारी फजूल तमन्नाओं ने धोखे में ही रखा, धोखे में रहे, शैतान ने धोखे में डाले रखा। कोई बात नहीं, ना भी किया तो पार हो जाओगी, फिक्र ना करो, बाकी कोई बोला सारी दुनिया को यही कर रही है, वो भी तो है और वो भी तो है, या ये कि तुम इतनी नेकी के भी तो काम कर रही हो ना, अगर ये ना किया तो कौन सी क्यामत है। यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, यानी मौत आ गई, खात्मा हो गया, तुम इसी कश्मकश में रहे, डावा डोल रहे, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, शक में पड़े रहे, तुम इंतजार में रहे, तुमने अपने आप को इम्तिहान में ही डाले रखा और मौत आ गई, पता भी नहीं चला। तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने वाले ने धोखे में ही रखा, देखो शैतान ने किस तरह तुम्हें धोखा दिए रखा। तो ये दोनों तरह के लोगों का आपने इस सूरह हदीद में इंशाअल्लाह ताला जब ये आएंगी तो बहुत ज़बरदस्त आयात हैं ये, तो उस वक़्त इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा आपके सामने आ गया, वो जो इंसान जिसके अंदर नूर का चराग रोशन है और वो जिसके अंदर अंधेरे हैं, वो जो सामने देख रहा है कि शायद पानी है लेकिन वो पानी नहीं है, वो तो धोखा है, वो उसके पीछे भाग भाग के भाग भाग के सारी ज़िंदगी भागता रहता है, हत्ता कि मौत आ जाती है। जब मौत आ गई, वहां पहुंच गए तो पता चला, हाय वो तो पानी नहीं था, ये तो कुछ और ही है, यहाँ पे अल्लाह को मौजूद पाया जो हिसाब किताब लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे धोखे में नहीं आना, अपने अंदर के चराग को रोशन करना है। और अगर हमारे सिर्फ सीनों के चराग रोशन हो जाएं तो हमारे घर रोशन हो जाएंगे। लोगों का इंतज़ार ना करें, एक इंतज़ार में ये भी आता है कि हम लोगों का ही इंतज़ार करते रहते हैं, पहले फलां अच्छा हो जाए, वो भी ये कर ले तो फिर मैं करूँगी, मेरी दोस्त भी कर ले तो फिर करूँगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुद कमज़ोर होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि दूसरे पहले कर लें तभी हम करेंगे। तो अगर हमने कर लिया, हमारे घर रोशन हो जाएंगे। और आपने देखा होगा इस सूरत में भी फौरन फिर घरों की बात आई थी ना, बुयूत की बात, और फिर जो बच्चे उन घरों में पलेंगे इंशाअल्लाह ताला वो भी फिर ऐसे बच्चे होंगे जो बाहया होंगे, क्योंकि जब ऐसी पाकीज़ा गोदों में बच्चे पल के निकलेंगे तो उनके घरों में भी फिर जाहिर है हया होगी। मगर जिस घर में कुरान से ज़्यादा म्यूज़िक की आवाज़ बुलंद हो, उस घर में नूर के चराग कैसे बाकी रहेंगे, वहाँ से तो ईमान चला जाएगा। जहाँ पे हया की बजाय बेहयाई की एग्जाम्पल ज़्यादा हों तो वहाँ पे कैसे नूर के चराग जलेंगे। जब हाँ इंशाअल्लाह ताला बाहया घर होंगे, बाहया औरत होगी, तो आगे औलाद फिर अगली नस्ल वैसी ही तैयार होगी, ऐसा माहौल ही फिर उनको यानी दिया जाएगा, तो आगे फिर वो ऐसा माहौल ही पैदा करने वाले होंगे, वो भी ईमान के ऊपर पूरा उतरने वाले होंगे। तो हर घर बैतुल कुरान जब तक नहीं बनेगा, बैतुल ईमान नहीं बनेगा, उस वक़्त तक माशरे से ये खराबियां नहीं दूर हो सकती। कम से कम हाँ अपने अपने घरों को अगर बना लेंगे ना, ऐसा जैसा कि इस सूरत में कहा गया है, तो आप देखेंगे कि इसी तरह चिराग से चिराग जलेगा, रोशनी फैलती जाएगी, और रोशनियां आएंगी तो ही अंधेरे दूर होंगे ना। फिर आपने इस सूरत में ही देखा है कि किस तरह फिर ये काम किया जाए, कैसे रोशनियां यानी फैलाई जाए, उसके लिए आपको बताया गया है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का, कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के लिए आपको परिंदों की भी मिसाल दी गई, बादलों की भी मिसाल दी गई, आपको इतना दिखाया गया कि देखो इसी तरह आपको ऑर्गेनाइजेशन का बताया गया, ये मस्जिदों का भी जो जहाँ पे मिलके अल्लाह के घर जहाँ पे अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक नमूना है। तो आपको बताया गया इज्तमाई काम कैसे करना है और उसको अपना काम समझना है, और फिर आखिर में सूरत के आपने देखा ना कि अपनी इंडिविजुअल एफर्ट को नहीं इतना, या इंडिविजुअल कामों को नहीं इतना बड़ा समझना जितना इज्तमाई काम को अहमियत देनी है। अगर उससे रुख्सत भी होना है, आपको एग्जम्पशन भी चाहिए, तो आप इजाज़त लेंगे, उसको अपना काम समझे। और आप देखेंगे शुरू से अगर आप सूरत पढ़ें ना, सारी आयात एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, पूरा एक तरीका कार बताया गया। आज तो बुराई को बुराई नहीं समझा जाता ना, बुराई इतनी आम हो चुकी है, इसको कल्चर का नाम दे दिया गया, और अगर कोई बुराई को बुराई कहता है तो उसको ही बुरा समझा जाता है। कुरान को पढ़ना, सीखना, समझना, रोशनी को फैलाना, इसको एक फजूल काम समझा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हमारे घरों को भी रोशन करने के लिए कहा है। घरों की बात आई है ना, वहां पे भी रोशनियां जलाओ। अपनी मस्जिद में तो होंगी, और ऐसी जगह जहां से नूर फूटेगा। तो अब आपने ये देखना है कि हमने सिर्फ अपनी दुनियावी जरूरियात पूरी करनी है, खाना है, पीना है, शादी ब्याह, बच्चे हैं, यही काम करने हैं। बनना संवरना है, जीनत का इजहार है, ये करना है। या फिर हमने माशरे से इन खराबियों को निकालने के लिए एफर्ट करनी है, ये देख लें फिर। अब आप कहेंगे क्या हम घर ना देखें, अपने बच्चे ना देखें, क्या करें? ज़रूर देखें, वो आपकी जिम्मेदारी है, मगर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, आपकी और भी जिम्मेदारी है। और उसको पूरा करने के लिए इन कामों के साथ साथ इज्तमाही भलाई के काम भी करने हैं। देखें, जिनके अपने सीने रोशन होते हैं ना, वो दुनिया को भी रोशन करना चाहते हैं। वो जहाँ पे भी होते हैं वो रोशनियाँ फैलाते हैं, चाहे वो बाजार में है। देखा नहीं आपने, बाजार में भी बैठे हैं तो वहां पे भी अल्लाह का जिक्र है। चाहे किसी बिजनेस सेंटर में है, चाहे कहीं शादी ब्याह में है, खुशी है, गमी है, कहीं पे भी है। तो उनके दिल जब अल्लाह की तरफ होते हैं ना, तो फिर कोई भी चीज उनको गाफिल नहीं करती। तो ये किरदार अपनाना है। तो हमें ये सोचना है हम सबको कि अब हमने क्या करना है। अपनी अपनी लाइफ में मशगूल रहना है, अपने खाने पीने, दावतें, जीनत का इजहार, या इनको एक तरफ रख के माशरे की इसलाह के लिए भी काम करना, और उसमें भी अपना हिस्सा डालना। और ये हो नहीं सकता, सारे आइडियाज़ धरे के धरे रह जाते हैं अगर लोग कमिटेड ना हो कि उनके ऊपर जो काम दिया जाए वो उसको पूरा नहीं करते, तो उस वक्त तक तो काम नहीं हो सकता ना। ये सारा काम इज्तमाही एफर्ट से ही हो सकता है, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। और आप देखते हैं, सूरत का स्टार्ट है फरदना से, फ़र्ज़ किया हमने इस सूरत को पढ़ना फ़र्ज़ है, और दरमियान में इतनी जगह पे आयात मुबय्यिनात आया, रोशन खुली आयतें, और आखिर में आया अल्लाह सब कुछ जानता है। तो आइए ज़रा इसका देखते हैं, रिकैप करते हैं, शुरू से देखते हैं। खुली आयात, पहली आयत में ही कहा गया ना, आयात मुबय्यिनात, यानी जो भी अहकामात इसमें दिए गए ना, बिल्कुल क्लियर हैं। और मकसद क्या है इनको क्लियरली बयान करने का, कि आप इनको याद रखें, इनसे नसीहत लें, इनके मुताबिक अमल करें। कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आती, कि हम तो बहुत सादा लो से लोग हैं और हम तो ऐसे लोग हैं कि हमें बात ही नहीं समझ आ रही, ये नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी आसान बातें कही हैं ना, इतनी खुली बातें कही हैं, इनका समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। तो आगे आप देखेंगे कि गैर शादीशुदा के लिए, अगर वो जिना करता है, मर्द है या औरत है, 100 100 कोड़े मारने, और शादीशुदा जानी की सज़ा रिजम है। रिजम के बारे में बहुत आपको लोग मिलेंगे जो कि इससे इख्तलाफ करते हैं, और वो कहते हैं आपको कभी हो सकता है कि कोई कहे कहाँ पे है कुरान में लिखा हुआ। तो बात ये है कि ये पहले से राइज था तरीका, ये सज़ा पहले से ही थी जो तौरात में भी है, और इसको इससे इख्तलाफ वही करते हैं जो मुनकरीन हदीस होते हैं, हदीस को नहीं मानते, क्योंकि रिजम की सज़ा सही अहादीस से साबित है, और इसको रिवायत बहुत बड़ी तादाद सहाबा कराम की उन्होंने रिवायत किया है। तो जो हदीस को नहीं मानता वो आखिर फिर आगे जाके रिजम को भी नहीं मानता। अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट को नोट करिएगा, तो फिर आपने ये जवाब देना है कि ये सही हदीस से साबित है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ये सज़ा दी गई। और ये सज़ा कौन देगा? ये कोई बाप, बेटा, हस्बैंड नहीं देगा, जैसे हमारे यहाँ है गैरत के नाम पे कत्ल, वो नहीं हो सकता। इसकी सज़ा का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ने, जो हुकूमत है, अदालत है, काजी है, वो देगी। और ये जुर्म जो है काबिले राजीनामा नहीं है, यानी इसके ऊपर दोनों पार्टीज राजी होके और उसके बाद नहीं बैठ सकती, बल्कि ये जो भी अदालत है उसको इसको इम्प्लीमेंट करना है। यानी जो जानी मर्द और जानी औरत, ये नहीं कह सकते हम आपस में तो राजी ही है ना, तो कोई बात नहीं है, कोई अब हमें सजा ना दे क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपनी रजामंदी से किया है। और अगर जिसको ये सजा मिल जाती है फिर उसके बाद उसके साथ वही मामला होगा जो किसी मुसलमान के साथ किया जाता है, यानी उसकी नमाज जनाजा भी होगी, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाया जाएगा उसको। अब आपके शायद जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि इतनी सख्त सज़ा क्यों है, पत्थर मार मार के मारना, तो आप ये देखें कि ये इतनी सज़ा सख्त इसलिए है कि इसके बगैर इस चीज़ को रोकना नामुमकिन है। अब हमारे यहाँ ये सज़ाएं नहीं है ना, इसी वजह से देखें ना ये आज बुराइयाँ फैल रही हैं। और देखें ऐसे ही नहीं ये सज़ा दे दी, ये अल्लाह ताला ने इसको पहले इस जुर्म को रोकने के लिए अहकामात दिए। मसलन है अल्लाह ताला ने निकाह के लिए आसानियां पैदा करने को कहा है, एक बीवी से कोई नहीं सेटिस्फाइड तो चार की इजाज़त दी है, फिर दिल ना मिले तब भी तलाक की और खुला की आसानी पैदा कर दी गई है, कोई औरत है मर्द से नहीं सेटिस्फाइड है खुला ले ले ठीक है कहीं और निकाह कर ले, लेकिन वो ये नहीं है कि अपने हस्बैंड से नहीं सेटिस्फाइड है तो वो बाहर जाके दोस्तियां करे। और फिर बिन ब्याहे बैठे रहने को इस्लाम ने नापसंद किया है, वे गुलामों और बेवाओं तक का निकाह करने का हुक्म दे दिया, या जो भी ऐसे लोग हैं आपको मैंने बताया था कि जो भी अकेले हैं चाहे वो तलाक याफ्ता हैं कंवारी हैं बेवाएं हैं सबके निकाह करने का हुक्म दिया। फिर उसमें सहूलत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने यही पसंद फरमाया कि शरायत कम से कम रखी जाए। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि जो भी असबाब हैं जो भी रास्ते हैं जो जिना की तरफ ले जा सकते हैं उनको भी बंद कर दिया, जिससे इंसान के जो सेक्सुअल इमोशंस हैं वो यानी ज़्यादा अराउज होते हैं उनमें तहरीक पैदा होती है, उन सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया, उन सारे चांसेस को भी बंद कर दिया। फिर इसी तरह औरतों का हुस्न उसकी नुमाइश करना उसकी जीनत का इजहार करना इन चीज़ों के ऊपर भी पाबंदी इसीलिए लगाई है, औरतों का आज़ादाना घूमना या ऐसी मजलिसें ऐसी गैदरिंग्स जहाँ पे मर्द औरतें साथ बैठें और मतलब गपशप हो रही है ये सब इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी इसी वजह से लगाई ताकि जिना के डोर्स क्लोज हो जाए। औरत को अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी है लेकिन जीनत के इजहार फिर भी नहीं कर सकती। तो देखिए जब इतनी सारी पाबंदियां लगा दी फिर उसके बाद भी कोई यहां तक पहुंचता है तो आप खुद देख लें कि फिर उसके लिए फिर सजा भी तो होनी चाहिए ना। अब फिर भी फिर इन सारे अहकाम पे अमल के बाद सोचें ना आप जिना करना कितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब नजरें भी झुक जाएंगी जिना कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर कोई इतना गंदा है कि फिर भी वो ये काम करता है तो फिर उसके लिए सजा है। आप देखें इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन को भी कानूनी तौर पर जुर्म करार दे दिया, यहाँ पे पाबंदी आयद कर दी उस पर। फिर इसी तरह माशरे में मर्दों औरतों के इकट्ठे होने के जो मौके होते हैं वहाँ स्कैंडल्स बनते हैं जिनसे फिर पूरे माशरे में एक शहवत की लहर दौड़ जाती है, तो उन चीज़ों से भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया, स्कैंडल्स को नहीं फैलाओ। गंदगी फहाशी जितनी ज़्यादा फैलती है इतने ज़्यादा लोग उससे मुतासिर होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी ही जैसे मैंने आपको बताया था गटर के अंदर भी गंदगी मौजूद होती है लेकिन अगर उसका ढक्कन उठा दें तो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है ना कि वो इसमें गिर जाएगा, अगर कोई ना भी गिरे तो सारी एनवायरनमेंट में बदबू फैल जाती है। यही हाल बेहयाई का है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता ना जिनकी हया उठ जाती है वो तो खुद तो गंदे होते ही हैं। इस्लाम ये चाहता है कि उनकी सोच उनकी जो बातें हैं उनकी जो जो वो लिखते हैं उसके असरात से दूसरे लोग बच जाएं, मत फैलाओ फैलाओ नहीं उसको, गटर उसका ढक्कन नहीं खोलो। इसी वजह से इस्लाम जो फहाशी की वो फैलाने पर आपको टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन फहाशी को फैलाने क्या है फहाशी को फैलाना, तो फहाशी को फैलाने पे इस्लाम इसलिए पाबंदी लगाता है ना ताकि गंदगी ना फैले, मत फैलाओ इससे कोई गिर सकता है इसी में आके, अदरवाइज सारे जगह बदबू फैलेगी, क्यों बदबू फैला रहे हो। हम बदबू के कैरियर्स बन जाते हैं, वो गंदी मक्खी बन जाते हैं जो एक जगह गंदगी पर बैठती है, फिर बाकी जगह जाके उसको फैलाती है। फिर देखिए नज़रें झुकाने का भी जो कहा, तो इंसान की नज़रें भी कैमरे का काम करती हैं ना, इर्द गिर्द के माहौल से सब कुछ कैप्चर करती हैं। कैमरा तो सिर्फ तस्वीर को स्टोर करता है ना, लेकिन नज़रें जो हैं जिस तस्वीर को कैप्चर कर लेती हैं वो दिल की जैसे हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो जाती है, और फिर इंसान बार 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 उसको सोचता है, और फिर उसका जाहिर है जहन जब उसके अंदर रहता है तो फिर आगे के रास्ते आसान हो जाते हैं। तो इस्लाम ने नज़र पे ही पहरा बिठा दिया। फिर देखें मर्दों और औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने एक कशिश तो रखी है, अट्रैक्शन तो है, जो सिर्फ घर के बाहर के लोगों में नहीं, घर खानदान वाले भी इसमें आते हैं, जिनसे खून की रिश्तेदारी भी होती है वहाँ पे भी इंसान जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने महरम और नामहरम रिश्तेदारों में तमीज़ भी रखी कि गैर महरम रिश्तेदारों के सामने भी बन संवर के नहीं जाना। फिर भी अगर आप कोई ये काम करता है तो आप फिर खुद बताएं ना कि ऐसे पत्थर दिल इंसान के ऊपर फिर पत्थर ही बरसाए जाएं तो अच्छा है ना, ताकि देखने वालों को भी इब्रत हो। और अल्लाह ताला ने देखे यहाँ पे फरमा दिया ना कि तर्स नहीं खाना, तर्स ना खाने से क्यों रोका गया कि अगर तर्स खा लिया तो फिर तुम रुक जाओगे ये करने से। तर्स वैसे तो तर्स खाना एक ईमान के मुखालिफ नहीं है, खिलाफ नहीं है, ये जाहिर है इंसान की नेचर है, ये चीज़ देखता है तो वो उसको एक दिल में होता है। लेकिन याद रखो मुजरिम को मासूम नहीं समझना, अगर ऐसा समझा तो आपकी नज़र में जुर्म जो है वो छोटा हो जाएगा और सज़ा आपको बड़ी लगने लगेगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तरस ना खाओ इस बारे में, अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, और फिर वहाँ पे खड़े भी हों कुछ लोग ताकि उनको इबरत मिले, देखें वो आके। और इस चीज़ में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की वो बहुत इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं जी, देखो इस्लाम में कितनी सख्त सज़ाएं हैं। तो याद रखें जो मोमिन है ना ईमान वाला, वो ये जानता है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इंसान का हमदर्द है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन है, तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। अगर उसने ये सज़ा रखी है तो इंसाफ है इसमें। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आदमी आयत नंबर 4 पे आ जाए किसी पाक दामन औरत या मर्द पर जिना की तोहमत लगाए तो उसके लिए सबूत लेके आए 4 गवाह, अगर नहीं लेकर आएगा तो 80 कोड़े लगाए जाएंगे और कभी उसकी दोबारा गवाही कबूल नहीं होगी, ऐसे लोग फासिक हैं। तो जिना करना ही नहीं बड़ा जुर्म, जिना का इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये किसी को इखलाकी तौर पर कत्ल करने के बराबर है कि आपने किसी की इज्जत के ऊपर इतनी बड़ी बात कर दी। और ये तोहमत लगाने की जो सज़ा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हद कज़फ़, ठीक है, हद कज़फ़ इसको कहते हैं। कि ये क्यों, इस क्यों हद कज़फ़ है, ये सज़ा क्यों है, ताकि लोगों की इज्जतें महफूज रहे ना, आप ये नहीं कि जो मर्जी जिसके ऊपर जाके मर्जी बातें करता फिरे, क्योंकि ये जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसके लिए इंतहाई इंतहाई तकलीफ दे बात होती है। और फिर ये भी इसका मकसद है कि ये नहीं है कि माशरे के अंदर खाम खा के आप बैठे बैठे फारिग लोग, उनको और कोई काम नहीं है, बस ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात के चर्चे जो हैं वो होते रहें, क्योंकि इससे लोगों को फिर जुर्म हल्का लगने लगता है ना। अब आप देखें ये मीडिया वगैरह क्या करते हैं, एक ही बात को फलां के साथ ज्यादती हो गई, ऐसे हो गई, वैसे हो गई, उसको बार बार दिखाते हैं, इतनी दफ़ा दिखाते हैं कि यानी आप उसके बाद सोचें, अगर आप देखने वाले हों पढ़ने वाले हों तो आप सारा दिन जिस बात को आप सुनते जा रहे हैं वो तो आपको जुर्म हल्का ही लगने लगेगा ना। ये तो आजकल आम ही है, एक खबर को वो 100 दफ़ा चलाते हैं, और फिर इससे शहवानी जज्बात भी और मुतहरिक होते हैं लोगों के। अल्लाह ताला नहीं ये चाहते, अल्लाह ताला चाहते हैं गंदगी जहाँ पड़ी है पड़ी रहे, आगे ना फैले। और अगर गवाह मौजूद हैं तब भी उसको उसके चर्चे नहीं होंगे, तब भी बातें नहीं होंगी, बल्कि तब क्या किया जाएगा, आप उसको अदालत में लेकर जाएं, वहाँ पे उसको सज़ा दे दी जाए बस। फिर भी आप बैठे बैठे घर बैठे हर एक बातें नहीं कर सकता, फोन उठाया उसके साथ वही बातें, तुम्हें पता है ऐसे हुआ फलां, वैसे हुई बात, कि उससे आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। और इसमें ये भी है कि पाक दामन औरत के ऊपर जब लगाया जाएगा ना, तो तब वो हद कजफ लगेगी, जो वैसे ही इस तरह के काम करने वाले हैं उनके ऊपर हद तो नहीं लगेगी, मगर हाँ कोई और लॉज बनाए जा सकते हैं मुल्कों में और उनके मुताबिक किया जा सकता है, लेकिन हद नहीं जारी होगी। जो हद जारी होगी वो उसी वक्त होगी जब के पाक दामन होगी और मर्द या औरत आज़ाद मुसलमान बालिग आकिल ये होना चाहिए। और अगर कोई तौबा कर ले इससे, तो फिर तौबा कैसे करेगा, कभी आइंदा किसी के ऊपर नहीं तोहमत लगाए। फिर लियान के बारे में आया, आपने लियान का भी पढ़ लिया, मर्द और औरत यानी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के ऊपर लानत भेजें एक दूसरे के ऊपर, के दूसरा झूठा है अगर, तो उस सूरत में खुद को लानत का मुस्तहिक करार देते हैं, तो उसको लियान कहते हैं इस हद को। ये भी हद है। हद कौन सी होती है, जो सज़ा अल्लाह ताला ने मुकरर कर दी है ना। मर्द कसम खा के कहे कि उसने बीवी को बदकारी करते हुए देखा है, और औरत भी फिर कसम खाए कि उसने ऐसा नहीं किया, तो ये है लियान। फिर आगे आपने वाकया इफ्क पढ़ा है, जिसमें हज़रत आयशा के ऊपर तोहमत लगाई गई और अल्लाह ताला ने फिर उनकी बरात में ये आयात उतारी हैं, और ये वाकया भी मुसलमानों के लिए बहुत बड़े खैर का बायस बना, क्योंकि इस वाकये की वजह से मुसलमानों को बहुत सारे कवानीन मिले। देखिए आज तक आप इन कवानीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। और फिर मुसलमानों को ये भी पता चला कि कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता, वरना 1 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन ना रहते। फिर आगे देखें, देखिए इस तरह के स्कैंडल्स के बारे में फिर बहुत सारी आयात आई हैं, कि स्कैंडल क्या होता है असल में, दो लोगों के बारे में कोई भी गलत ताल्लुक का जब अफसाना बना लिया जाता है उसको कहते हैं ना स्कैंडल। तो इस स्कैंडल्स के बारे में इस्लाम ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया कि ये कोई ऐसी दिल लगी की बातें नहीं है स्कैंडल्स बनाना और फैलाना, बल बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है। अगर आप सच्चे हैं तो 4 गवाह लाएं, अगर झूठे हैं तो फिर आपको 80 कोड़े मारे जाएंगे। तो ये इल्ज़ाम लगाना है आम बात नहीं, अगर शौहर इल्ज़ाम लगाएगा तो अदालत में जाके लियान करके अपना मामला साफ कराए। तो किसी के बारे में कोई भी अगर स्कैंडल बनाता है तो वो आराम से नहीं बैठा रह सकता, उसको आके गवाह लेकर आए नहीं तो सजा खाए। अब देख लें फिर अगर ऐसा होने लगे तो कभी मुआशरे में जिना के चर्चे हो सकते हैं, बातें होंगी नहीं, हर कोई डरेगा। फिर अल्लाह ताला ने नेक गुमान करने का हुक्म दिया है, कि ऐसे पाक दामन लोगों के बारे में नेक गुमान करना चाहिए। हुस्ने ज़न जो है ना, नेक गुमान, ये भी इबादत है। जो बदगुमान नहीं करता है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान में, तो हक यही है कि उसके बारे में नेक गुमान रखे। बदगुमान नहीं करने वाला वो उसकी अपने दिल की खराबी है, उसका सबूत है कि उसका अपना दिल खराब है। तो जब आपको कोई बुरी बात पता चले तो आपका क्या काम बनता है, उस बात को सुन के उसको दोहराए नहीं, और जो आपको बता रहा है उसे कहें क्या इसका कोई सबूत है, ठीक है, और नेक गुमान रखें, ठीक है, नेक नेक उसके बारे में जिसके वो पाक दामन है अगर उसके, तो उसके बारे में नेक गुमान रखें। फिर आगे आ जाएं, फाहिशा को बेहयाई को फैलाने की अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखें कितनी सख्त सज़ा बताई है आयत नंबर 19 में, कि जो अहले ईमान में फहाशी फैलाते हैं। और जब से आपने ये आयत पढ़ी होगी तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई होंगी जहाँ पे एकदम दिमाग में अलार्म बजने लगता है कि ये फहाशी फैलाई जा रही है, इनका और कोई मकसद नहीं है। ये ऐसे लोग ये चाहते हैं बेहयाई एक जगह ना रहे, घर घर इसको पहुंचा दिया जाए, इसमें चाहे साइन बोर्ड्स हैं, चाहे लिटरेचर हैं, चाहे रिसाले हैं, अखबार हैं, टीवी है, चाहे इंटरनेट है, कुछ भी है, रेडियो है, अफसाने हैं, डाइजेस्ट हैं, कुछ जो भी इस किस्म के, मैं हर एक चीज़ हर एक प्रोग्राम पे नहीं कह रही हूँ, मैं इन इन चीज़ों को नहीं कह रही कि ये चीज़ें बुरी हैं, मगर मैं ये कह रही हूँ जो इनमें कॉन्टेंट दिखाया जाता है, आपको खुद अगर आपके अंदर ईमान का नूर का चिराग है तो आपको खुद हक और बातिल नजर आने लगेगा, आपको खुद पता चलने लगेगा ये फहाशी है जो फैलाई जा रही है, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो इसको हम कल्चर का नाम देके या ये तो आजकल होता है ये कह के आराम से नहीं बैठ जाते, बैठ सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, ये कितनी बुरी चीज़ है। और फिर आप देखिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया 21 में, शैतान जो है वो किस चीज़ का हुक्म देता है, बेहयाई और बुराई का काम करने का हुक्म देता है, ये शैतान के काम है। मोमिन तो इस बात से ही कांप जाता है कि आगे आगे शैतान हो और पीछे पीछे वो चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे शैतान के कदमों की पैरवी करने की बात है ना। सोचें ज़रा, आगे शैतान है और हम पीछे पीछे जा रहे हैं, तो हमारा ठिकाना फिर क्या होगा? तो बहुत कॉन्शियस रहना है, बेहयाई और बुराई की तरफ ये लेकर जाता है, इसके पीछे नहीं जाना। और फिर अगली आयत में बहुत बड़ा सबक है, वलयाफू वलयस्फहू। और जब ये आयत सुनी थी ना हज़रत अबूबकर सिद्दीक ने, तो उन्होंने क्या फरमाया था, भला वल्लाही इन्ना नुहिब्बु अन तग़फिर लना या रब्बना, वल्लाही हम ज़रूर चाहते हैं, अल्लाह की कसम हम ज़रूर चाहते हैं कि ऐ हमारे रब तू हमारी सारी खताएं माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, तो तुम भी तो माफ़ कर दो ना, अल्लाह भी तो माफ़ करता है, वो भी तो रहम करने वाला है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, तुम भी माफ़ कर दो। आपने सोचा किसी को माफ़ करने का? और ये सोच के कि अल्लाह ताला भी तो मुझे माफ़ कर देता है और वो भी मुझे माफ़ करेगा अगर मैं करूँगी माफ़। आगे देखिए अल्लाह ताला ने कैसे डराया है कि तुम्हारी ज़ुबानें तुम्हारे ही खिलाफ़ गवाह बनने वाली हैं, इसलिए बी केयरफुल। ये एहसास जब इंसान को हो जाता है ना कि मैं हर वक्त अल्लाह की निगाह में हूँ, मेरा हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। फिर आप देखें आगे, घरों के अंदर दाखिले के पर बता दिया गया, ये भी सद्दे ज़राए में से है ना, जिना इससे भी रोका जाता है कि घरों में दाखिले की पाबंदी, कैसे घर में दाखिल होना है, कैसे इजाज़त लेनी है, सलाम करके आना है, और उसके अंदर किसको ये यानी प्रिविलेज है, किसको ये इख्तियार है कि वो मना करे, घर वाले को। ठीक है, और ये इजाज़त लेने का हुक्म अपनी माँ बहनों के पास जाने के लिए भी है। इजाज़त लेने के अलावा वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब घर वाले चाहें तब उनके घरों में जाया जाए। हालात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिन हालात में घर वाले दाखिल होने की इजाज़त दें उनमें दाखिल हों, और अपने बीवी के पास जाते हुए भी खनकारें। ये आपको मालूम है ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूर का कौल है, वो खुद भी जब घर में आते थे तो ऐसी आवाज़ पैदा करते थे जिससे पता चल जाता था कि वो आ रहे हैं। हर एक का अपना एक स्टाइल होता है ना, और अगर कोई मुलाकात से आपसे माजरत कर दे तो आपने क्या करना है, माइंड नहीं करना, खुश दिली के साथ वापस आ जाना है। मुलाकात पे ना तो मजबूर करना है, ना उसके दरवाजे के आगे खड़े हो जाना है कि आखिर तंग आके बुला ही ले, ना ही कोई बुरा मानना है, ना इसको घर वालों की तरफ से ज्यादती समझना है कि उसके बाद कहें कि अब हमने तो कभी इनके घर ही नहीं जाना। और इसी में फिर ये चीज़ आ जाती है कि किसी के घर में दाखिल होने की, तो मैंने आपको बताया था कि झांकना भी या नज़र डालना या दूसरे का खत पढ़ना, ये सब भी इसी में आ जाता है। और फुकहा ने तो समात को भी निगाह के हुक्म में शामिल किया कि सुनना किसी की बातें, ये भी इसी तरह है ना, जैसे दाखिल हो जाना उसकी प्राइवेसी में, तो जैसे घर में आप किसी की प्राइवेसी में दाखिल होते हैं, इसी तरह आप किसी का खत पढ़ के भी उसकी प्राइवेसी में दाखिल हो रहे हैं, आप उसके घर में झांक के भी होते हैं। इसी तरह कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी ये बीमारी उनको होती है कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैंने इस चीज़ को सुना है कि क्योंकि एक दूसरे के सामने अपार्टमेंट्स होते हैं, घर होते हैं, तो मतलब ये बाइनोकुलर्स लेके दूसरों के घरों के अंदर पीप करना, नज़र डालना, निगाह डालना, और ये उनकी यानी एक आदत होती है ऐसे लोगों की, ये सब ममनू है। फिर उसके बाद आप देखते हैं मोमिन मर्दों को जो हुक्म है निगाहें नीची रखने का, एक दफा निगाह पड़ जाए तो वो माफ है, लेकिन जहां एक दफा कशिश महसूस हो, अट्रैक्शन महसूस हो, वहां से उसी वक्त निगाह हटा लेनी, फिर दोबारा अगर निगाह डाली तो ये उसकी तरफ से बदकारी होगी। और फिर मैंने आपको बताया था कि आंखों का भी जिना है, लगावट की जो ऐसी बातें करना है, बेहाई की या इस तरह की बातें करना जिना, जुबान का जिना है, आवाज़ से लज्जत लेना कानों का जिना है, हाथ लगाना हाथों का जिना है, नाजायज मकासिद के लिए चलना पाँव का जिना है। ठीक है, अब लेकिन नज़रें झुकाने से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेप्शनल हैं, मसलन है कि निकाह के लिए किसी औरत को देखा जा सकता है, इसी तरह किसी जुर्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए देखा जा सकता है, अदालत में गवाही के लिए देखा जा सकता है, इलाज के लिए देखा जा सकता है, वैसे अदरवाइज फिर किसी की तरफ देखना ऐसे जायज़ नहीं है, नज़र झुका लेनी चाहिए। अब आप देखें ये जो मैंने आपको हदीस बताई थी कि कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे, तो सतर किसी का भी नहीं देख सकते, तो शर्मगाह की हिफाजत का भी आया है, यानी अपना सतर को किसी के सामने नहीं खोल सकते। अब औरतें जब अपनी वैक्सिंग वगैरह करवाती हैं, टांग की मसलन करवाई, तो नाफ से घुटने तक औरत का सतर औरत से भी है, तो नहीं खोल सकते इसको। मर्द का भी मर्द से सतर नाव से घुटने तक है, कई घुटने को भी शामिल करते हैं, कुछ घुटने को शामिल नहीं करते कुछ फुकाहा, समझ आई बात? तो बेहतर तो यह घुटने को भी अगर शामिल रखें तो अच्छा है, लेकिन घुटने से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा सकते ना, यानी घुटने को छोड़ के ऊपर तक तो इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकते कि रान खुले। ठीक है, थाइस यानी आपकी। और फिर आगे औरतों को हुक्म है, और आप देखेंगे औरतों को वही हुक्म है जो मर्द को है नजरें नीची करने का। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने देखें बता दिया ना कि अल्लाह ताला खूब जानता है कब नज़र उठती है, कब झुकती है, कब नज़रें मिलती हैं, कब नज़रों ही नज़रों में पैगाम दिए जाते हैं, ये अल्लाह ताला खूब जान रहा है किसको किस नज़र से देखा, किसने अपनी नज़र देख के झुका ली और किसने देखता ही गया, कोई और जाने ना जाने, साथ बैठा हुआ बंदा नहीं जानता, वो अर्श पे बैठा हुआ देख रहा है, वो खूब जानता है। तो इरादे से गैर महरमों को नहीं देखना, नज़र पड़ जाए तो हटा लेनी है, दूसरों के सतर को नहीं देखना, मजलिस में आमने सामने बैठ के नहीं देखना, रास्ता चलते हुए या दूर कोई खेल हो रहा है वहाँ पे नज़रों नज़रें पड़ जाए मर्दों पे तो कोई गुनाह नहीं है उसमें, या एक घर में रहते हुए किसी पे वो देखना इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर हकीकी ज़रूरत पड़ने पे एक घर में रहते हैं मिसाल के तौर पे जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर नज़र पड़ती है तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि शहवानी कोई ऐसी नज़रें ना हो। फिर आप देखते हैं इस्लाम में उस जीनत के इजहार को एक्सेप्शन करार दिया है जो जिस्म का हिस्सा है, जिसका छुपाना और पर्दा करना मुमकिन है ही नहीं। मसलन कोई चीज़ पकड़ाते हुए आपके हाथ नज़र आ जाते हैं, हाथों की अंगूठी नज़र आ जाती है, मेहंदी नज़र आ जाती है, आंखों का सुरमा या काजल नज़र आ जाता है, आंखें नज़र आ जाती हैं, या आप ये देखें आपका चादर है, स्कार्फ है, वो उस वो आपने जब लिया हुआ है तो वो भी एक सेल्फ एक जीनत ही हो जाती है, तो उनको छुपाना नामुमकिन है। तो ये एक्सेप्शंस है, अदरवाइज़ बाकी सारे आप जीनत के इजहार को जब बाहर निकलेंगे तो उसको छुपाएंगे। अब ये ना हो कि शौहर पहले तो बाहर जाने पे आपको आपकी जीनत देख ही लिया करते थे, किस्मत से उनकी भी किस्मत जाग जाती थी कि आपको तैयार देख लेते थे, घर में तो तैयार देखते नहीं हैं। अब जब से आपने हिजाब अबाया शुरू किया अब वो कहते हैं घर से बाहर भी नहीं देख सकता, घर में वैसे ही लहसुन अदरक की स्मेल आती है इसमें से, तो ये कौन सा हिजाब है मुझे बताएं। तो औरत की जीनत का सबसे ज़्यादा देखने का हकदार कौन है? उसका शौहर। जहाँ पे ये सारी लिस्ट है तो आप देखें कि इसके अंदर टॉप पे हस्बैंड है, सारी जीनत औरत की अपने शौहर के लिए, वो ही ना देख सके तो फिर जाहिर है वो आपके हिजाब की मुखालफत ही करेंगे ना। अगर आप उनके लिए बने संवरेंगी और उनको ये दिखाएंगी कि देखें मैं आपके लिए बनने संवरने में मैंने कोई कमी नहीं की है, उसी तरह आ रही हूँ आपके सामने कि जैसे कि मैं पहले बाहर लोगों को दिखाती थी, उस तरह के कपड़े जो आपने लोगों के लिए सिलवाए अपने हस्बैंड के लिए पहने, वो जो दूसरों को दिखाने के लिए जेवर बनवाया वो हस्बैंड, चलो रोज़ नहीं आप कर सकते, ऑफ कोर्स रोज़ आप इस तरह से बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हो सकते, मगर कम अज़ कम जैसे फॉर एग्जांपल वीकेंड्स वगैरह हैं इस पे हैं, आप अपना खाना वाना सब तैयार करके फिर उसके बाद खुद भी तैयार हों, और रोज़ दिन इस नीयत के साथ तैयार हूँ कि मैं अपने शौहर के लिए सिर्फ तैयार हो रही, बाकी दिनों में भी ये नहीं कि बिल्कुल वो किचन वाले कपड़े ही आपने पहने, में बाकी दिनों में भी आप चेंज ज़रूर करें, हस्बैंड के आने से पहले तैयार ज़रूर हों। मैं ये नहीं कह रही जैसे दावतों में जाने के लिए शादियों में जाने के लिए तैयार होती हैं, वो वाला ना भी सही, कम अज़ कम चेंज करना और हल्का फुल्का अपनी आराइश करना, ये बायसे अजर है, बायसे सवाब है आपके लिए। तो शौहर ज़रूर ही आपके हिजाब की मुखालफत करेंगे जिस वक्त के वो आपको कभी भी तैयार ना देखें, अब तो वो ज़रूर फिर अनॉयड होंगे कि पहले जाते थे सब एक साथ बैठते थे, चलो वहाँ पे जहाँ पे और देखते थे तो वो भी बेचारे देख ही लेते थे, अब उनको कभी देखना ही नसीब नहीं होता आपको ढंग के हुलिये में, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह औरत का फिगर भी सबसे बड़ी उसकी जो है वो जीनत है, उसका फिगर जिससे मर्द बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे कोई भी आपका अगर अबाया भी ऐसा है जो ऐसी फिटिंग वाला है कि आप कह रही हैं अबाया भी ज़रा फिटिंग कर दो ना, बहुत खुला ना हो, अब वो भी साथ साथ जिस्म के सिला हुआ है, तो मुझे बताएं ऐसे अबाया का क्या फ़ायदा। ऐसा भी अबाया लोगों को पहने हुए देखा है कि मसलन है किसी औरत का चेस्ट है भारी है तो वो ऐसे अबाये पहन लेंगी कि जिससे और नुमाया हो रहा है, इतना टाइट है, तो आपको अबाया भी देख के अपने साइज के मुताबिक करना चाहिए कि जिसमें आपका यानी फिगर ना नुमाया हो। इसी तरह अब सर्दियां हैं, अब हम सोचेंगे कि अब तो अबाया क्या पहनना है, अब तो कोट ही पहन ले, तो कोट पहने बेशक अगर आपका कोट इतना लंबा है कि वो नीचे तक आ रहा है, क्योंकि देखें जिलबाब का जहाँ पे जिक्र है ना इंशाल्लाह ताला हम सूरह अहज़ाब में ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जिलबाब क्या है, सर से लेके पैर तक की चादर, अब उस चादर को चाहे आप सी लें तो वो अबाया बन गया, चाहे आप वो मोटी ले लें तो कोट बन गया, लेकिन फिर उसके तकाजे भी तो पूरे कर रहा हूँ, अब अगर वही कोट भी इतना स्लिम और स्मार्ट कोट है कि कमर से भी वो आपने उसकी फिटिंग की, चेस्ट से भी की, ज़रा हिप से भी कर ली, और फिर उसके बाद उसको आप पहन रही हैं, तो मुझे बताएं कि वो कैसे आपका अबाया बन गया। दूसरे ये कि आपके टखने नंगे नहीं होने चाहिए, टखने कवर्ड होने चाहिए, अब तो माशाल्लाह हमारे लिबास शलवार कमीज़ भी ऐसे हैं कि टखने खास तौर पे नंगे किए जाते हैं, टखने अनकवर्ड मर्दों को रखने हैं, औरतों को नहीं, औरतों को कवर रखने हैं, ठीक है ना, मर्दों को कहा गया अनकवर करो उन्होंने कवर कर लिए, और औरतों को कहा गया कवर करो तो उन्होंने अनकवर कर लिए, उलट ही हो गया। तो जीनत प्लीज़ शौहरों के लिए करें ताकि वो भी आपको इजाज़त दें फिर हिजाब की। और इसके अंदर देखें एक बात और, मैं बहुत ज़्यादा आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, और इस मेरी बात को ज़रा आप सब गौर से सुनिए, सूरह नूर पढ़ने का मतलब अब ये नहीं है कि आपने पढ़ ली और उसके बाद आज से आपने घर में मार्शल लॉ लगा दिया कि सारे अब जो है ना जैसे मैं कह रही हूँ वैसे चलेंगे, और ये भी बंद और वो भी बंद और वो भी बंद, ये नहीं हो सकता, ठीक है, आपके शौहरों ने आपके बच्चों ने सूरह नूर नहीं पढ़ी, आपने इतने पारे पढ़ने के बाद अब 18वें पारे पे आके सूरह नूर अब पढ़ी है, तो आप देखें कि कितनी तैयारी आपकी की गई, आपका दिल उसके मुताबिक ढला और अब सूरह नूर पढ़ी, आप एक दिन में उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, प्लीज़ आप लोगों को मुतनफ़िर नहीं करें दीन से, जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं अपने घरों में तो तब घरों से भी शिकायत आती हैं कि हमारे घरों में तो फिर वो जाहिर है आपके कुरान पढ़ने के भी खिलाफ होंगे कि भाई ये कैसा कुरान पढ़ रही है, ये तो उल्टा जो है घर के अंदर एक डंडा पकड़ लिया और बस सारों को उससे, शौहर है या बच्चे हैं सबको उससे हांक रहे हैं, तो अल्लाह ना करे फिर आपके शौहर भी फिर बागी होके अगर वो बाहर जाएंगे ना फिर, तो फिर आप मत रोइएगा कि अब तो हमारे घर में ऐसे हो गया और ये हो गया ये कुरान पढ़ने की वजह से, कुरान को दोष ना दें, आपकी अपनी बेअकली को दोष दें फिर, क्योंकि देखें कुरान उतरा कितने सालों में, 23 सालों में उतरा, और 23 साल में उन लोगों ने इन अहकामात पर अमल किया। आहिस्ता आहिस्ता करके उनके दिल भी उस मुताबिक ढले और फिर वो शमियाना वाताना करने वाले बन गए। लेकिन आपके शौहरों के या बच्चों के दिल अगर अभी नहीं ढले हैं, आज तक तो उन तक ये रोशनी पहुंची ही नहीं, अब एक दिन आप कहती हैं अब ये करो, अब वो ना करो, वो करो और वो ना करो, तो ये कैसे मुमकिन है? वो तो आपसे नफरत करने लगेंगे, औलाद भी और शौहर भी। अगर बच्चे बागी हो जाएंगे तो फिर भी आप कुरान को नहीं दोष दे सकती कि दीन जब से आया ना हमारे घर में तो लड़ाइयाँ ही पड़ गई। वो दीन ने नहीं डाली लड़ाइयाँ, आपकी जो कम अकली है उसने डाली है। क्योंकि जब आप बच्चों को भी कहेंगी ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो, आप खुद बताइए आपको जब आपने कुरान नहीं पढ़ा था, अगर आपकी कोई सहेली या कोई कहता था, कोई भी आप सोच लें उस्ताद या आपके वालिद या आपके भाई, कोई भी कहते थे ये करो और ये नहीं करो, तो आप मानती थी क्या? मेरे साथ चादर लेकर निकला करो, ऐसे नहीं जा सकती, तो आप मानती थी क्या? कितना गुस्सा आता होगा आपको उस वक्त। अपने आप को इस तरह से खड़ा करके देखें, फिर सोचें। आज आप इसलिए मानी है कि कुरान ने आपका दिल बदल दिया। आपके जब शोहरों के भी दिल बदलेंगे, आपके दीन को देख के, आपके अखलाक को देख के, आपकी किरदार को देख के, आपके अंदर जो बहुत बड़ी चेंज आई है उसको देख के, तो वो भी इंशाल्लाह इस तरफ आएंगे। किसी ने मेरे से जिक्र किया वो कुरान पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझसे कहा मेरा बड़ा दिल चाहता है, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सुबह को उठूँ और आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कितना मज़ा है। मैंने कहा देखो आप खुद तो उठती नहीं हो जो आप कुरान पढ़ रही हो, और आप चाहती हो कि आपके हस्बैंड की आवाज़ आपको सुने, बहुत अच्छी बात है, बहुत उसकी मतलब मोहब्बत थी कुरान के लिए, लेकिन आप ये देखो कि आप क्या डिमांड कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि बाकी सारे उठें और आपकी आवाज़ सुने, लेकिन हो क्या रहा है को उलट आप उनसे डिमांड कर रहे हैं, तो आप अपने आप को तो चेंज करते नहीं, आप चाहते हैं सारा घर बदल जाए। याद रखिए लोगों को चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि घर के 4-6 अफराद को जाहिर है मुश्किल होगा, लेकिन अपने आप को चेंज करना आसान है। आप अकेली हैं, आपका अपने ऊपर जोर है, अपने आप को पहले बदलें, दूसरों से बाद में डिमांड करें। क्या आपके अखलाक दुरुस्त हो गए? क्या आपके मामला दुरुस्त हो गए? क्या आप में इतनी बड़ी चेंज आई, इतनी बड़ी खैर पहुंचाने वाले आप बन गए हैं कि आपके घर वाले कह रहे हैं कि भाई आप तो वाकई कुरान पढ़ के क्या हीरा बन गई हैं, आप वाकई कुरान पढ़ के अब वाकई सबके लिए कितनी खैर का बायस बन गई, आपके बच्चे आपके अखलाक से मुतासिर हुए कि आप कितनी नरम मिजाज हो गई हैं, कितनी रहमदिल हो गई हैं, कितनी अच्छी हो गई हैं। क्या वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप कितनी नाइस हैं? क्या आपके शौहर ये कह रहे हैं कि आप कितनी बाखलाक है? वाकई जिस तरह से उन्होंने अब आपके अंदर सब्र व तहम्मुल देखा है, और जैसे अब आप उनकी खिदमत कर रही हैं, और जैसे अब आप उनके साथ अच्छी हैं, तो क्या वो आपके अखलाक किरदार से इम्प्रेस हुए? जब नहीं हुए तो आप कैसे डंडा लेके सबके पीछे पड़ सकते हैं? ये काफ़ी घरों से इस तरह की शिकायत भी आई, एक किसी की मैंने बात करी, बहुत सारी जगहों से, और बाज़ लोगों ने ख़ुद भी अपने एक्सपीरियंस को बताया। तो देखें अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो आपके घर वाले ये कहेंगे, इल्ज़ाम किस चीज़ पे आएगा? इस कुरान पे। घर वाले ये कहेंगे जब से कुरान पढ़ने लगी है ना तब से ही ऐसी हुई है। तो आपकी वजह से क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह के दीन पे उसकी कलाम के ऊपर कोई बात आए? मैं ये नहीं कहती कि आप उनको भलाई की बात ना करें, लेकिन सबसे बड़ी भलाई की तबलीग आपका अपना किरदार और अखलाक है। अगर वो ना बदला तो आपकी सारी तबलीग धरी की धरी रह जाएगी, आप सारा दिन एक वो डिक्टेटर की तरह बन जाएंगी कि जो बस ये चाह रहा है कि डंडे के शोर से ये करो और ये ना करो, ये करवाए। आपने अगले दिन उठ के टीवी बंद कर दिए, उठा के वो फेंक दिए, इंटरनेट बंद, फलाना चीज़ बंद, हर चीज़ बंद, इस घर में बस अब कुछ नहीं होगा। ये तरीका नहीं है तबलीग का। ऐसी तबलीग से लोग इस दीन से भागेंगे। हमने दीन से लोगों को भगाना नहीं है, हमने दीन को इतना प्यारा दिखाना है कि लोग खुद पूछें कि देखें जिस चीज़ ने आपको बदल दिया वो क्या चीज़ है, हमें भी बताओ। चर्च या क्रिश्चियंस अपने दीन की तबलीग कैसे कर रहे हैं आज? आपने देखा वो सबसे पहले अपना बुलंद इखलाक किरदार दिखाते हैं, बेलॉस होके काम करते हैं, जहां जाते हैं हॉस्पिटल बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं, एक चर्च बना देते हैं। जब वो बेलॉस लोगों की खिदमत करते हैं ना, लोग खुद ब खुद इतने अट्रैक्ट होते हैं कि वो कहते हैं हमने तो यही दीन अपनाना है। लेकिन हम तो अपने घरों में भी ऐसी तबलीग ना कर सके कि हम अपने बुलंद किरदार से बताएं कि दूसरा मजबूर हो जाए कहने पे कि आप बताएं आप इतनी अच्छी कैसे बन गई, कैसे बन गई, कैसे आपके अंदर ये चेंज आया, लोग महसूस कर सकें आपके अंदर बड़ी तब्दीली को। लोगों को आपके अंदर कोई अगर चेंज नहीं नज़र आ रहा तो आप कैसे उनको मुतासिर करेंगी, आप कैसे उनको मौसर इफ़ेक्टिव तबलीग कैसे कर सकेंगी। तो ऐसी गलतियां ना करें। ये सबको मैं कह रही हूं, और याद रखें जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है वही आप बनने की कोशिश ना करें। वो ये है कि लोगों को आप समझते हैं कि जोर जबरदस्ती से दीन की तरफ लाया जा सकता है, जोर जबरदस्ती से नहीं लाया जा सकता। दीन मोहब्बत से फैलता है, प्यार से फैलता है, आपकी अच्छाई से फैलता है। आपकी अच्छाई होगी लोग आपकी तरफ भागेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। आपके अंदर सख्ती, नफरत और बस हर वक्त एक डिक्टेटर बने रहना, एक हाकिम बने रहना, घर है या बाहर है, ऐसा होगा लोग आपसे दूर भागेंगे। जब लोग आपके करीब ही नहीं आएंगे तो आपकी बात कैसे सुनेंगे, चाहे आप कितनी अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन उसको सुनाने के लिए ज़रूरी है कि लोग आपके पास आएं, आपके साथ कंफर्टेबल हों, आपको सॉफ्ट समझें। जब लोग आप में सख्ती देखते हैं, आप में नफरत देखते हैं, आपके अंदर भरा हुआ एक लावा वो गुस्से का वो देखते हैं, और आपके अंदर एक डिक्टेटर देखते हैं, तो वो आपसे दूर भागेंगे। कभी भी वो नहीं पैगाम आपका सुनेंगे, चाहे आप कितनी अच्छी बात कर रही हैं। तो पहले आपको लोगों को अपने से मुतासिर करना होगा। देखिए फूल भी अपनी खुशबू से लोगों को अट्रैक्ट करता है, फिर ही लोग आके उसको तोड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसके उसके कलर को देखते हैं। पहले उसकी खुशबू फैली होती है जिससे लोग उसके करीब आते हैं। आपकी खुशबू फैली है या बदबू? देखिए अगर आप लोगों को दूर करने वाले हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। फिर शौहर के आबा की भी बात आई थी, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने पढ़ा है कि शौहर के ददियारा ननिहाल के सारे बुजुर्ग इसमें आ जाते हैं। जिस तरह औरत अपने बाप और ससुर के सामने आ सकती है, इसी तरह उन बुजुर्गों के सामने भी आ सकती है, लेकिन अभी तक मुझे इसकी कोई दलील नहीं मिली है। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया था भाई हैं या बेटे हैं, उसमें सके भी सौतेले भी हैं, और भाई जो माँ की तरफ से भी बहन भाई बनते हैं वो भी सारे हैं, इनके सामने जीनत का इजहार हो सकता है। और इनके अलावा आपके जहन में जिसका भी आता है, फलां है या नहीं है, फलां है या नहीं है, तो हर एक के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लिस्ट में देख सकती हैं, अगर वो इस लिस्ट में मौजूद हैं तो ठीक है, अगर नहीं है मौजूद तो फिर नहीं है। जाहिर आपने बहनोई का पुपा का पूछा, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो महरम तो नहीं है जैसे कि इसमें, लेकिन हाँ मतलब उनके सामने चेहरा खोल सकते हैं। इसकी दलील वो उस हदीस से मिलती है जिसमें हज़रत असमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई थी। और एक और भी हदीस में हमें पता चलता है कि हज़रत आयशा के जो रज़ाई भाई थे उनकी बेटी आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और उनका भी चेहरा खुला हुआ था। उनके रज़ाई भाई का नाम था अब्दुल्ला बिन तुफैल, उनकी बेटी आई थी। तो ये उससे पता चलता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यानी फूफा थे। तो इससे हमें पता चलता है खालू फूफा या बहनोई, तो ये लोग बेशक महरम तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो नॉन महरम होते हैं उस तरह से भी नहीं आता इनका। फिर जो निकाह नहीं कर सकें तो उनको भी चाहिए कि वो पाक दामन रहें, ये आती है बात। फिर इसमें फिर आगे सुभान अल्लाह वो प्यारी आयत जिसका मैं इस वक्त से जिक्र कर रही हूँ, नूरुन अला नूर की। तो मोमिन के दिल के अंदर जब नूर आ जाता है ना, तो ये नूर सारी जगह फैल जाता है उसके इर्द गिर्द। आपका नूर फैल रहा है आपके घर में? सारा माहौल उस नूर से, सारी देखें अंधेरे ज़रूर चले जाएंगे, आपको रहने सहने के ढंग भी आ जाएंगे, और ज़िंदगी में तो इतनी बहार आ जाती है। और क्योंकि इंसान को पता चल जाता है ना कि मेरे रब किस तरह मुझे चाहता है कि मैं जीऊँ, इंसान का लाइफ स्टाइल बदल जाता है, वो जन्नत की ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाता है। तो रब के नूर में तो ठंडक है, मिठास है, सकून है, इत्मीनान है, ये क्या तरीके हैं कि आपसे लोग भागने लगें? तो इस नूर को दिल में बसाएं और अपने घरों को रोशन करें, और ये फिर रोशनी ये फैलती फैलती घरों से बाहर भी जाएगी और हर तरफ फैलेगी। ये ईमानी जिंदगी की रोशनी है। इसी रोशनी के साथ कब्र में फिर उतरना है, और इसी रोशनी के साथ इंशाल्लाह इस नूर को लेके मैदाने हशर में जाना है, और फिर इसी रोशनी में ही इंशाल्लाह चलते हुए, जो मैंने आपको सूरह हदीद की आयात बताई है कि फिर ये नूर होगा तो पुल सिरात से हम पार हो सकेंगे। तो दिलों के चिराग जलाने हैं तभी रोशनी होगी, लेकिन इस रोशनी से कुछ दिल महरूम क्यों है? क्यों है? इसलिए कि ख्वाहिशात की हुकूमत है वहां पे, इसलिए नहीं दिल रोशन, रोशनी से महरूम हो गए। और इस रोशनी का पता कैसे चलेगा कि हमारे पास रोशनी है या नहीं? ये क्वेश्चन है आपसे। देखिए, दिल के अंदर जब नूर आएगा ना, तो इंसान के लिए रब की रज़ा पाना, उसकी रज़ा को जानना, उसका इल्म हासिल करना, उसकी रज़ा वाले काम करना, उस रब की खुशी के लिए जीना, उसकी खुशी की खातिर, उसकी खातिर जान देना, ये ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। इंसान रब का बन जाता है, रब्बानी, उसके ऊपर रब का रंग चढ़ जाता है। रोशनी का मिजाज है ना, ये छुपाए छुप ही नहीं सकती। किस जगह पे रोशनी हो वो जरूरी फैलेगी, आप उसको नहीं छुपा सकते। तो ये रोशनी फिर खुद ब खुद दूसरों तक पहुंचेगी, आप देखेंगे खुद ब खुद पहुंचती है, बशर्ते कि आपके अंदर आया है नूर। तो ये नूर अल्लाह ताला किसको देता है? जो इसकी तरफ आना चाहता है, जो तलब करता है इस नूर को। आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये नूर था तो देखा ताइफ के पत्थर भी खाए हैं, लेकिन नूर फैलता ही चला गया। और जिसके लिए अल्लाह ना नूर दे तो उसके लिए कोई नूर नहीं है। फिर आगे आप देखते हैं, सराब की बात आई, जैसे मैंने आपको बताया था, अल्लाह ना करे कि किसी के आमाल सराब की तरह हो जाएं, जिनके वो पर वो तकिया किए हुए, वो एक्सपेक्ट किए हुए कि उसको इनका अजर मिलेगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर आगे गहरे समंदरों की बात आई, जिससे मुराद दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी सुझाई नहीं देता। जब इंसान उसके गहरे अंधेरों के अंदर चला जाता है ना, उसमें जितना डूबता जाता है उतना ही अंधेरा है, फिर उसको कुछ नहीं सुझाई देता, फिर उसको बुरे भले की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर वो हक देख ही नहीं सकता। तो जो जितना दुनिया में डूबा होगा ना, उतना ही जाहिर है वो अंधेरे में है, फिर वो उसको क्या नज़र आएगा? ना उसको हलाल हराम का पता है, ना उसको पता चल भी जाए तो नज़र ही नहीं आता। ना हलाल का फ़र्क हराम से पता चल रहा है, ना बुराई का भलाई से पता चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पता चलता उसको, क्योंकि वो है ही अंधेरे में बेचारा। और अल्लाह का नूर क्या है? उसकी हिदायत, उसका कलाम, उसकी किताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। और आखिरत में कैसे मिलेगा ये नूर? हशर के मैदान में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी नूर की, वो है। फिर आगे अल्लाह ताला ने तस्बीह दिखाई, कायनात की तस्बीह, देखो हर चीज़ कैसे तस्बीह कर रही है, आगे पीछे, तुम्हारे दाएं बाएं, तुम्हारे ऊपर नीचे, तुम्हारे हर शक्लों में, रंगों में, मिजाजों के इख्तलाफ के बावजूद सब एक ही तस्बीह कर रहे हैं। सबका मकसद अल्लाह की इताअत है, सबका मकसद उसकी हम्द बयान करना है, सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं। तो तुम भी तो करो ना। और परिंदे देखो, परिंदों से अल्लाह ताला ने कैसे सफबंदी हमें सिखाई है, ऑर्गेनाइज्ड होना हमें सिखाया। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रही है, बल्कि अल्लाह ने हर एक चीज़ को सिखाई है उसकी तस्बीह। हर एक को अपनी नमाज का भी तरीका आता है, तस्बीह का भी तरीका आता है। नन्ही मखलूकात से देख लो, बड़े से बड़े पहाड़ों तक। तो चाहो तो तुम इनकी तरह तुम भी बन जाओ और तस्बीह करो, चाहो तो तुम इनकार कर दो। तुम अपने खालिक को नहीं पहचानते, मगर ये पहचानते हैं, इन्हीं से कुछ सीख लो। फिर बारिश की मिसाल दी अल्लाह ने, बारिश इज्तमाई अमल जब होता है ना, जब सारे काम करते हैं मिलके, सारे कतरे मिलते हैं, सारे बादल मिलते हैं, तभी उसका रिजल्ट क्या होता है? बारिश होती है। तो बारिश जैसा काम, बारिश कितनी फायदेमंद है इंसानों के लिए, बारिश जैसा काम कोई करना चाहे ना, इंसानों के लिए कोई मुफीद बनना चाहे, फायदेमंद बनना चाहे, यानी अल्लाह ताला की वही, उसके रसूलों की तालीमात कोई लोगों तक पहुंचाना चाहे, तो उसको भी कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी। जैसे ये बादल कर रहे हैं। मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। जैसे बारिश, जैसा काम, इसके लिए मुसलसल जुड़ के रहने की ज़रूरत है। इसी तरह अल्लाह की वही का काम दूसरों तक पहुंचाने के लिए, उसका फैज़ पहुंचाने के लिए सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है, मिल के चलने की ज़रूरत है। और फिर बादलों के पहाड़, इससे मुराद आसमान में जो बादलों में बर्फ़ का जम के पहाड़ की शक्ल इख्तियार करना है, वो भी है। और फिर आप देखें आगे, वो लोग जो कि समयाना वाताना करते हैं, ऐसा भी एक गरोह है। और दूसरा वो गरोह है कि जो कहता है हमने हम ईमान तो लाए हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने ईमान को कंटिन्यूसली आपको एफर्ट करनी पड़ेगी इसको जलाए रखने की। ये बुझे नहीं, ये कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि इन लोगों ने भी कहा ना आयत 47 में देखें, वो कहते हैं हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत की, लेकिन फिर क्यों जाते हैं, उल्टे क्यों जाते हैं? इसका मतलब अल्लाह ना करे कभी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हम सबको, हमारी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह हमारा ईमान ना हमसे छीन लेना। इस ईमान को जलाए रखने की ज़रूरत है ऑल द टाइम। ईमान सेम स्टेट में नहीं रहेगा। आपको कभी हो सकता है कि कोई इंसान कहे मैं अल्लाह रसूल पे ईमान लाया और मैंने इताअत की है, लेकिन वो फिर जाए, ऐसा अल्लाह ना करे कि किसी के साथ हो। इसलिए कंटिन्यूस कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हमारा ईमान जो है वो बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, कम ना हो। और उसके लिए क्या करना है, इल्म लेने की ज़रूरत है, बाकायदा तौर पे सीखने की ज़रूरत है। आप ऐसा माहौल अपनाएं, ऐसी इल्मी मजालिस हों आपकी जिसमें बैठ के अल्लाह की याद करें। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, ये खुद ब खुद जलता नहीं रहेगा। आप देखेंगे कुछ अरसा ईमान को उसकी ग़िज़ा ना मिले, ये कुरान ना मिले, बुझने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में इस्लाम नज़र नहीं आ रहा, इस्लामिक वे नहीं नज़र आता, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान दिल में नहीं बैठा अभी। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला का क्या फैसला है, वो ईमान वाले ही नहीं है, क्योंकि उनके देखिए वो नज़र ही नहीं आ रहा ना, इताअत में नहीं ना नज़र आ रहा। तो ऐसे लोग ईमान वाले नहीं है। ईमान वाले होने के लिए क्या ज़रूरी है, इताअत में भी नज़र आए ईमान। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों से मुंह मोड़ते हैं, आयत नंबर 48 में देखें, और उनकी वजूहात भी बयान कर दी गई यहाँ पे, तीन जो वजूहात हैं। और ये कितनी अजीब बात है ना कि अपने ही पैदा करने वाले के बारे में शक में पड़े हैं, और देखो उसी से भागते। तो हम भी देखें इस्लाम की किसी सज़ा के बारे में, इस्लाम के किसी तरीके के बारे में, हमारे दिल में कोई तंगी तो नहीं है, कोई शक तो नहीं है, हम राज़ी हैं अल्लाह और रसूल के हर फैसले के ऊपर, हम राज़ी हैं क्या? जो उन्होंने हमें हुक्म दिया है उसको हमने मान लिया, हमारा दिल उसके ऊपर मुतमईन है, या हम उसको बहुत सख्त और बहुत ज़ालिमाना और बहुत कुछ सही नहीं समझते? ऐसा तो नहीं हो रहा, तंगी तो नहीं हो रही दिल में? तो फिर ये देख लें कि यहाँ पे सूरह हदीद में भी क्या बयान किया गया, किसी भी अल्लाह के फैसले के बारे में, उसके हुक्म के बारे में ये नहीं कहना कि ये कुछ सही नहीं है। आप उसके ऊपर अमल अभी चाहे नहीं भी कर रहे, मे बी अभी आपका ईमान इतना नहीं स्ट्रांग हुआ, आपका नूर चराग इतना नहीं रोशन है, अभी आपको इतने नहीं समझ आ रहे अहकामात, या अभी आप अमल में कमज़ोर हैं। अपनी कमज़ोरी को मानिए कि मैं कमज़ोर हूँ, अभी तक मैं नहीं कर पाई, लेकिन ये ना कहें कि इस्लाम की बातें ज़ालिमाना है, या ये क्या सख्त बात है, या ये तो मुझे कोई फेयर नहीं लग रहा, या ये तो मुझे उसमें कुछ लॉजिक कुछ खास समझ नहीं आ रही कि ये क्यों है। इस तरह की फजूल बातें मुंह से नहीं निकालनी। और फिर आयत 51 में देखें, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून की बात है कि जो समयना अताना करने वाले हैं वही कामयाब होने वाले। हमने कद अफलहल मोमिनून पढ़ी थी ना सूरह मोमिनून में, और आप देखें वहाँ पे भी मोमिनून की बात थी कि ईमान वाले वो हैं जिनके अंदर ये चीज़ें। और फिर आप इसमें भी देखें, पीछे आए ज़रा, आयत नंबर 31, जिसमें मोमिनात के लिए पर्दे के अहकाम आते हैं, उसमें भी लअल्लकुम तुफ्लिहून है। तो यहाँ पे भी उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इसका मतलब है कि जो हमने सूरह मोमिनून की शुरू में बातें पढ़ी थी वो सिफात भी अपने अंदर पैदा करनी है। और कोई औरत ये ना समझे कि बस मैं वही कर लूंगी तो काफ़ी है, ये ना भी करूँ तो कोई बात नहीं है। नहीं, देखें यहाँ पे आयत 31 में भी जहाँ पे पर्दे के अहकाम हैं और आपको पैर ज़मीन पे नहीं मारने हैं, इस तरह से नहीं चलना, उसके अंदर भी आगे यही आया है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें इस हुक्म पे भी अमल करना पड़ेगा, और अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो आयत नंबर 51 में आए कौन से लोग कामयाब हैं, जो अल्लाह के हर हुक्म पे जब उसका रसूल उस हुक्म की तरफ बुलाए तो वो उसके ऊपर क्या कहते हैं, समयाना व अताना, हमने सुन लिया हमने मान लिया, तभी तुम कामयाब होगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं कहते तो तुम कामयाब नहीं हो, और ना ही जब तुम आयत 31 में ये पढ़ लेते हो उसके बाद तुम इन हुक्मों पर नहीं चलते तो तुम कामयाब नहीं हो। और कौन सी चीज़ है जो हमें समय ना आता ना करवाएगी कि जब हम बात को सुने तो उसके बाद वो फैसला चाहे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक है या ख़िलाफ़ है, हम उसको फिर भी मान जाए। हाँ, यही फ़र्क है मोमिन में और आम आदमी में। आम आदमी अपने मफाद का बंदा है, वो जिसमें उसका फ़ायदा होता है वो उसके पीछे जाता है। मोमिन जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, वो जहाँ पे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है वो वही करेगा, वो उसका गुलाम है। वो ये चीज़ कैसे उसके अंदर आती है, क्योंकि उसको यकीन होता है ना मोमिन को कि अल्लाह के हर फैसले में मेरे लिए इंसाफ़ है। वो जानता है कि अल्लाह मेरे बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है, अल्लाह ताला मेरा ज़्यादा हमदर्द है, मैं इतना अपने आप को नहीं जानता कि मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, अल्लाह ज़्यादा जानता है। वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, इसलिए वो कहता है समय ना वाताना, उसको चाहे समझ आए ना आए उसने बस कहना है समय ना वाताना, मैं बस मैंने मान लिया, बस अल्लाह का हुक्म आ गया ना, फिर तो कोई बात ही नहीं। और फिर आगे आप देख रहे हैं ना, बार बार इसमें आती और रसूल की आती और रसूल की बार बार बात आती, इताअत करो रसूल की, इताअत करो रसूल की। और फिर आगे ये खुशखबरी भी दी गई है कि अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तभी हिदायत पाओगे, आयत नंबर 54 देख लें। तो अगर जिसको हिदायत चाहिए, जो कहता है ना इदिन सिरात मुस्तकीम, हिदायत दे दे मुझे सिरात मुस्तकीम की, तो अल्लाह ताला ने बता दिया ठीक है मेरे रसूल के तरीके पे चलोगे तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। आगे भी देखें आयत 56 में अती और रसूल की बात आई है, कोई ना ये समझे कि मुझ पर रहम किया जाएगा, अगर मैं ये तीन काम ना भी करूं तो मुझे कोई बात नहीं, मैं काबिले रहम हूँ, रहम का मुस्तहिक हूँ। अल्लाह ताला ने फरमा दिया तीन काम करोगे, अगर अल्लाह की रहमत लेनी है ना और उसकी मदद तुम्हें चाहिए, हम सब चाहते हैं ना अल्लाह की रहमत मुझ पे हो, अल्लाह की मदद मेरे पर आए, तो उसका तरीका क्या है, नमाज, ज़कात, इताते रसूल, ये तीन है बातें। उसके बाद अल्लाह ताला ने अलकवाइद के बारे में अहकामात दे दिए। अब बाज़ दफ़ा औरतें क्योंकि बहुत जल्दी ये समझने लगती हैं, अच्छा सॉरी पीछे ये बात गुजर गई कि ये तीन औकात में जो बच्चों को भी हुक्म है कि वो इजाज़त के बग़ैर दाखिल ना हो कमरों के अंदर, तो वो अब उम्मीद है कि आपने बच्चों तक बात पहुँचाई होगी ये। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि किस एज के बाद बच्चों को साथ सुलाना नहीं चाहिए, ताकि वो ऐसे पर्दे की आपकी जो बातें हैं वो उसको ना देखें ना। फिर अलकवायद के बारे में जो अहकाम हैं, तो इसमें भी साफ जाहिर हो रहा है जो औरतें अपने आप को ये समझती हैं कि मैं अलकवायद में हूँ लेकिन उसके बाद जेबो जीनत का इजहार करती हैं, तो आपने यहाँ पे शर्त देख ली है कि गैरा मुतबर्रिजातिम बिज़ीना, अपनी जीनत को जाहिर करने वाली ना हो। तो कवायद में तो हम अपने आप को शामिल कर लेते हैं, लेकिन क्या ये शर्त पूरी कर रहे हैं, तो कपड़े अपने यानी अबाया या चादर वही उतार के रख सकती हैं जो कि फिर ये काम ना करती हों, जीनत का इजहार करने वाली ना हो। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो उनके अंदर ना विलादत के काबिल हों, ना वो उनको हैज़ आता हो, ना उनके अंदर कोई कशिश अब रह गई हो, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हों। लेकिन सबसे बड़ी क्या बात है, एहतियात फिर भी अफजल है। एहतियात का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी चादर या अबाया ना ही उतारें तो बेहतर है, उनको भी ये कह दिया कि यही उनके लिए बेहतर है। फिर आगे खाने पीने के मामलात में रिश्तेदारों और दोस्तों के हकूक़ की अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी है। अब आप किसी की चची भी हो सकती हैं, किसी की मुमानी भी हो सकती है। देखें यहाँ पे कह दिया ना, मामुओं के घर में खा सकते हैं, तो आप मुमानी भी हो सकती हैं, चचाओं के घर में खा सकते हैं, आप चची भी हो सकती हैं। अब ये तो नहीं होगा कि मामू या चचा ही उठ के खाना बनाएंगे, जाहिर आप बनाएंगी तो वो खाएंगे ना उनके भांजे या भतीजे आके। तो इसके अंदर फिर हमें माइंड नहीं करना चाहिए कि लो जी ये तो हमारे घर आ गए खाने के लिए। अपने दिल को बड़ा करें, शौहर का भतीजा भतीजी हो, भांजा भांजी हो, वो आपके घर से खा सकते हैं, ये अल्लाह ने उनको इजाज़त दी है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप किसी की बहू भी हो सकती हैं, तो ये उनका हक है शौहर के वालदैन का कि वो आपके घर से खाएं, उसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, एक लड़की से कहा था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम तो सोचते हैं कि शौहर और उसका माल हमारा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और फरमाया। तो ठीक है, आपके शौहर हैं, लेकिन उनके ऊपर हक औरों का भी है। तो दोस्त दोस्त के घर में कब खा सकता है? जब दोस्त को तकलीफ ना दे, उसके लिए कोई अजियत का बायस ना बने, तो फिर बगैर इजाजत के भी खाया पिया जा सकता है, लेकिन अजियत का बायस ना बने, मारूफ तरीके से। फिर इकट्ठे खाओ या अलग अलग खाओ, कोई कोई हरज नहीं है, मगर इकट्ठे खाने में बरकत है। फिर आपको जिन घरों में खाना खाने की इजाज़त है, वहां दाखिले के आदाब भी बताए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आगे देखें, अमर जामिन की बात है, यानी इज्तमाई काम जिसमें तमाम उम्मत का जो है ना मफाद है, उसमें मशवरा है, कोई जंगी काम हो सकता है, कोई इज्तमाई फलाह के काम हो सकते हैं, उसमें भी रुख्सत तलब किए बगैर आप नहीं जा सकते, इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये ईमान की निशानियों में से है। तो जो इज्तमाई काम होते हैं ना, उनको तरजीह देना ज़रूरी है, तभी तो सबके काम हो सकेंगे ना। हर कोई कहे मैंने अपना ही काम करना है, तो फिर कैसे हो सकता है कोई फलाह का काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर आगे बता दिया गया, नाम नहीं लेना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने में हमें, जैसे हम अपने वालदैन का नाम लेके नहीं कभी उनको कहते, बहुत रिस्पेक्टफुली कहते हैं, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, आज भी उनको नाम लेके पुकारना या ऐसे कहना, वो एहतराम के खिलाफ है, और उनका बुलाना, जब वो कोई बात कहें तो उनकी बात को भी ऐसे मामूली नहीं समझना चाहिए कि जैसे आम लोगों की बात है ना, उनकी बद्दुआ को ऐसे मामूली समझना चाहिए कि वो कहें कि हलाक हो जाएगा ये, और हम कहें कि कोई बात नहीं, हदीस ही है ना, उसके अंदर ही कहा गया ना हलाक हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हदीस ही है, उसी में कहा गया ना लानत है ऐसे शख्स के लिए, तो मैं तो हदीस ही है, चलो कुरान में तो नहीं है ना। तो उनकी बात को मामूली ना समझो, जाहिर है जो उनकी दुआ या बद्दुआ लगती है, ठीक है, वो आम बंदे की बद्दुआ नहीं है। और जो उनके हुक्म को नहीं मानते और कहते हैं हम हदीस को नहीं मानते, या इस तरह की बातें करते हैं, या हदीस को मामूली समझते हैं, या इस ऐसे उसको समझते हैं, तो उनको फिर डरना चाहिए या उनके ऊपर कोई आजमाइश ना आ जाए, या उनके ऊपर कोई अजाब ना आ जाए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के ऊपर अजाब लेकर आती हैं, आजमाइशें लेकर आती हैं। और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जिसके ऊपर एंड किया, याद रखना हर चीज़ को अल्लाह जानता है ना, हमने किसी के लिए करनी है ना, किसी को दिखाने के लिए ना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, इसीलिए करना है कि अल्लाह ताला जानता है कि मैं किस हालत पे हूँ, उसको मेरे तमाम हालात का इल्म है, वो देख रहा है मुझे कि मैं पढ़ के भी फिर क्या कर रही हूँ, और मेरी हालत क्या वही है जो जब मैंने नहीं पढ़ा था उस वक्त थी। और इसमें की वर्ड्स याद रखिए, वलियाफू वलियस्फहू, घर वालों के साथ भी मामला करना है, रिश्तेदारों के साथ भी मामला करना है। तो इसमें जैसे आयत नंबर 22 में आए थे, माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। इंशाअल्लाह ताला हम इस सूरह की अब एट अ स्ट्रेच एक ही दफ़ा में इंशाअल्लाह तिलावत सुनेंगे, ताकि सारे मज़ामीन हमारे सामने आ जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने तर्जुमा भी इसका याद किया हुआ ना, तो इंशाल्लाह जब आप सुने तो आप जहन में तर्जुमा को रख के फिर सुनिएगा, ताकि इसका एक एक हुक्म हमारे सामने वाजे हो जाए और भूले नहीं इंशाल्लाह ताला। और साथ साथ देखते जाइएगा कि इन पे अभी तक मैंने कितना और किस हद तक अमल कर लिया, क्योंकि देखें अगर अभी तक भी अमल नहीं हुआ या अमल की कोशिश नहीं हो रही या अमल का आपने सोचा नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है जब आगे अगली सूरतें आएंगी तो फिर तो ज़ाहिर है मुश्किल ही होगा ना। ये तो बातें भूल ही गई होंगी उस वक्त तक। तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ सोचना है इस बारे में भी जो भी अहकाम आते हैं। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।
بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.